नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति पर अपनी साझा चिंताओं और संवाद तथा कूटनीति से समाधान की आवश्यकता पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों देश क्षेत्र में शांति और स्थिरता के शीघ्र बहाली के लिए घनिष्ठ सहयोग और समन्वय जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रायसेना डायलॉग के 11वें संस्करण का शुभारंभ किया। मुख्य भाषण देते हुए फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्सेंडर स्तूब ने कहा कि विकासशील और अल्प विकसित देश ये तय करेंगे कि भविष्य में विश्व व्यवस्था कैसी होगी और इसमें भारत की अहम भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सीट मिलनी चाहिए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि आगामी कुछ दिनों में होने वाली चर्चाएं नई क्षमताओं, प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई सोच पर केंद्रित होंगी।
अगले कुछ दिन में हमारी चर्चा नई क्षमताओं, सैन्य, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, मानव संसाधन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा प्रौद्योगिकी के बारे में होगी। ये चर्चा दो नए विचारों, जोखिम लेने की बढ़ती प्रवृत्ति और साथ ही जोखिम कम करने तथा विविधीकरण के बढ़ते संकल्प के बारे में भी होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्सेंडर स्तूब ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र केंद्रीय बहुपक्षीय सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई है। फिनलैंड के राष्ट्रपति की भारत यात्रा संपन्न होने पर भारत फिनलैंड संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि दोनों देशों के नेताओं ने आपसी सम्मान, लोकतंत्र और विधि सम्मत शासन मूल्यों पर आधारित वैश्विक शांति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान की चुनौतियों के विरुद्ध वैश्विक सहयोग के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कृषि और ग्रामीण परिवर्तन विषय पर बजट के बाद आयोजित होने वाले वेबिनार को संबोधित करेंगे। इसके अंतर्गत चार प्रमुख क्षेत्रों, कृषि, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन तथा ग्रामीण आजीविका को शामिल करते हुए 8 अलग अलग वेबिनार सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। सत्र में पशुपालन मूल्य श्रृंखला में निजी क्षेत्र के निवेश और उद्यमिता, मत्स्य पालन के लिए जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास पर विचार विमर्श होगा। भारतीय वायुसेना का एक सुखोई युद्धक विमान असम के जोरहाट से उड़ान भरने के बाद लापता हो गया है। वायुसेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि विमान से कल शाम करीब 7:42 पर आखिरी बार संपर्क हुआ था। वायुसेना ने कहा कि आगे जानकारी जुटाई जा रही है। विमान का पता लगाने के लिए खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के अगले सर्वोच्च नेता के चयन में उन्हें व्यक्तिगत रूप से शामिल किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक्सियोस को दिए साक्षात्कार में कहा कि खामेनेई का बेटा कमजोर उम्मीदवार है और अपनी दावेदारी पर समय बर्बाद कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें वेनेजुएला में डेल्सी रॉड्रिगेज की नियुक्ति प्रक्रिया की तरह ही इस प्रक्रिया में भी शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे ऐसे नेता चाहते हैं जो ईरान में सद्भाव और शांति लाए। ईरान ने आयतुल्ला अली खामेनेई के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी बनने के प्रमुख उम्मीदवारों में मुज्तबा खामेनेई शामिल हैं। भारत ने नेपाल में आम चुनाव सफलतापूर्वक संचालित होने और नागरिकों द्वारा उत्साहपूर्वक लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रयोग का स्वागत किया है। भारत ने पिछले वर्ष की असाधारण परिस्थितियों के बावजूद इन चुनावों के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर प्रधानमंत्री सुशीला कार्की, नेपाल सरकार, वहां के लोगों और विभिन्न हितपक्षों को बधाई दी। भारत T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 7 से हराया। भारत ने इंग्लैंड को 254 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में इंग्लैंड की टीम 246 रन ही बना सकी। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फाइनल मुकाबला 8 मार्च को अहमदाबाद में न्यूजीलैंड और भारत के बीच खेला जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने भारतीय टीम को फाइनल में पहुंचने पर बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि टीम की दृढ़ता और कड़ी मेहनत सराहनीय है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।